एक बात सर्व संबंध से मेरा है, यही स्मृति समर्थ आत्मा बना देती है। कुमार, अब ऐसा जीवन का नक्शा तैयार करके दिखाओ जो सब कहे निर्विघ्न आत्माएं हैं तो यहाँ है। सब विघ्न विनाशक बनो, हलचल में आने वाले नहीं, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले। हलचल में आने वाले नहीं, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले। शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले बनो। सदा विजय का झंडा लहराता रहे। ऐसा विशेष नक्शा तैयार करो, जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है। लेकिन गिराने में यूनिटी नहीं करना, चढ़ाने में। सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, यही लक्ष्य रखो। कुमार अर्थात सदा आज्ञाकारी वफादार, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले। जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का, जो बाप के संस्कार वो बच्चों के। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो बाप ने किया है वही रिपीट करना है, कॉपी करना है। इस कॉपी करने से फुल मार्क्स मिल जाएगी, वहाँ कॉपी करने से मार्क्स कट जाती और यहाँ फुल मार्क्स मिल जाती। तो जो भी संकल्प करो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर नहीं है तो चेंज कर दो, अगर है तो प्रैक्टिकल में लाओ। कितना सहज मार्ग है। जो बाप ने किया वह आप करो, ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले ही सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित रहते हैं। बाप का वर्षा ही है सर्वशक्तियाँ और सर्वगुण। तो बाप के वारिस अर्थात सर्वशक्तियों के सर्वगुणों के अधिकारी। माया को भी सबसे अच्छे ग्राहक अधिकारी से अधिकार जा कैसे सकते हैं। अगर अलबेले बने तो माया चोरी कर लेगी। माया को भी सबसे अच्छे ग्राहक ब्राह्मण आत्माएं लगती है, इसलिए वह भी अपना चांस लेती है। आधा कल्प उसके साथी रहे तो अपने साथियों को ऐसे कैसे छोड़ेगी। माया का काम है आना, आपका काम है जीत प्राप्त करना। घबराना नहीं, शिकारी के आगे शिकार आता है तो घबराएंगे क्या। माया आती है तो जीत प्राप्त करो, घबराओ नहीं। अच्छा, तो क्या पढ़ा यहाँ पर। एक बाप अगर सर्व संबंध से मेरा है, यही स्मृति समर्थ आत्मा बना देती है। अगर सर्व संबंध बाबा से है तो बाबा कहते हैं कि यही स्मृति समर्थ आत्मा बना देती है। कुमार, अब ऐसा जीवन का नक्शा तैयार करके दिखाओ जो सब कहे निर्विघ्न आत्माएं हैं तो यहाँ है। सब विघ्न विनाशक बनो, हलचल में आने वाले नहीं, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले। तो हलचल में आत्माएं कैसे आती है। हलचल में आने के लिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि तीन बातें हलचल में लाती है। एक तो व्यर्थ या अशुभ बोल, व्यर्थ या अशुभ सोचना, व्यर्थ या अशुभ कर्म करना। तो ये तीन बातें जो है वो आत्माओं को हलचल में लाती है। तो ऐसी कई परिस्थितियां होती है जो हमको हलचल में लाती है और वायुमंडल ही बदल देती है। हमारी जो स्थिति रहेगी उससे वायुमंडल परिवर्तन हो जाता है। तो दो दिन पहले यहाँ पर एक सेवाधारी भाई एक आमरस और गुलाब जामुन लेके जा रहे थे। किसी ने हमको बताया, हमने नहीं देखा, लेकिन सीन इतना आश्चर्यजनक है। देखो कि वो जब लेके जा रहे थे तो अचानक से कुछ हुआ और वो गिर गया पूरा, और पूरा आमरस और सारे गुलाब जामुन गिर गए। और जो मधुबन निवासी खड़े थे वहां पर, क्या किया होगा उन्होंने, किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। सबने कहा ड्रामा है करके सब उठाने लगे। अब ये देखो कितना अच्छा है। अब ये वायुमंडल कैसे बना, हमारी वृत्ति से बना। हम चाहते तो हम रिएक्ट भी कर सकते ना, चिल्ला भी सकते थे कि देखो क्या हो गया। लौकिक में देखो, अगर कुछ भी ऐसा अगर होता तो जिसने किया उसको कितनी पड़ती। और एक एक ग्लास आम रस का जाओ बाहर लेने के लिए तो 100 120 ऐसे रुपए का आता है, और वो सारा आम रस गिर गया, इतने गरम गरम गुलाब जामुन गिर गए, लेकिन किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। भले बाद में किया होगा, लेकिन उस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारे रिएक्शन ही वायुमंडल को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो ये एक बहुत रीसेंट एग्जाम्पल हमको लगा, किसी ने आके हमको बताया कि देखो कैसे, तो हलचल में नहीं आए वहां पर कोई भी, देखो क्या हो गया। वो एक्चुअली भट्टी के भाई बहनों के लिए लेके जा रहे थे, तो कोई हलचल में नहीं आया उस समय, और सबने इतने अच्छे से मतलब रिएक्ट किया, उसमें रिस्पॉन्ड किया बोलेंगे, रिएक्ट नहीं, क्योंकि रिएक्ट जब हम करते तो हम बुरी तरह से ही रिएक्ट करते। तो एक ऐसा है। फिर बाबा यहाँ कहते हैं कि शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले बनो। तो शक्तिशाली वायुमंडल कैसे बनेगा? तो तीन चीजें यहाँ पे होती है, जैसे वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, ये तीनों चीजें साथ में जाती है। जैसे हमारी वृत्ति होंगी वैसे ही वाइब्रेशन होंगे, वैसे ही वायुमंडल होगा। तो जैसे कि कहते, जिस वृत्ति में हम रहते वही वाइब्रेशन। तो जैसे कि अगर एक कमरे में, बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते, अगरबत्ती जला दो तो उसकी खुशबू फैलेगी, तो जो परफ्यूम हम पहनते हैं हमारे स्वमान का या हमारे वृत्ति का, उसी तरह से हमारे वाइब्रेशन फैलते और वायुमंडल बनता है। तो शक्तिशाली स्थिति वायुमंडल बनाएगी, हमारे श्रेष्ठ संकल्प वायुमंडल बनाएंगे। और कैसे शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा?
योग से
योग
योग योग
योग से सर्व की विशेषताएं देखने से, योग से। देखिए, अगर हम यहाँ कोई कमरे में है या बाहर घूम रहे हैं और मधुबन में जाए, तो मधुबन का वातावरण कैसा है, कितना शक्तिशाली है, क्योंकि योग है वहाँ पे, तपस्या है, इसलिए वायुमंडल बन रहा है। ऐसे ही जब हम एक मंदिर में जाएंगे या एक मस्जिद में जाएंगे या एक चर्च में जाएंगे, तो वहाँ का वायुमंडल कैसा होता है, वहाँ कितनी शांति होती है। और अगर आप उसको एक कंपेरिजन करो एक शॉपिंग मॉल से, तो वहाँ पर वायुमंडल कैसा होगा, कितना हलचल का होगा, वहाँ की वृत्तियाँ कैसी होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पे लोभ है, मोह है ना, आकर्षण है, और यहाँ पे पीस है, यहाँ पे शांति है। इसलिए क्यों क्यों होता है वहाँ पे, क्योंकि मंदिर में मंत्र पढ़े जाते हैं, मालाएं जपी जाती है, मस्जिद में दुआ पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, चर्च में भी प्रेयर्स पढ़ी जाती है। तो जो भी आत्मा वहाँ जाती है, वहाँ के वो संकल्प अच्छे कर रही होती है, तो उनके संकल्पों से वो वातावरण बन रहा होता है। तो एक है योग से। फिर दूसरों की विशेषताएं देखने से, जब हम दूसरों की विशेषताएं देखेंगे तो ऑब्वियसली हम अच्छा ही सोचेंगे। अगर दूसरों की बुराइयां देखेंगे तो फिर बुरे ही वाइब्रेशंस निकलेंगे। तो अगर हमारे मन में घृणा है तो फिर हमसे बदबू ही निकलेगी, हमसे कोई अच्छे वाइब्रेशंस नहीं निकलेंगे। और
इसीलिए
गंगा जल।
दूसरे पानी को भी देखा, गंगा जल का भी क्रिस्टल इतना सुंदर है और कोई नहीं है।
कितना अच्छा, ऐसे ही है ना, ऐसे ही कितने उदाहरण देते हैं ना, कि पानी को अगर हम अच्छे वाइब्रेशन या कुछ चार्ज करें तो वो उसके क्रिस्टल्स देखते तो वो कितने अच्छे होते हैं, और अगर किसी को बुराइयों से देखे या बुरे वाइब्रेशंस दे तो उसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, वो भी दिखाते हैं। तो और वायुमंडल शक्तिशाली हम कैसे बनाए?
एक दो को आगे बढ़ाएंगे और
एक
सुखदाई बोल,
सुखदाई बोल, एक दूसरों को उमंग उत्साह से आगे बढ़ाना, मनसा में प्योरिटी। अगर हम प्योर है तो हमसे प्योर वाइब्रेशन निकलेंगे। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छे ही वाइब्रेशन निकलेंगे, देह बांध में नहीं रहेंगे, देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे। और
कर्ति
निमित्त आत्मा बनकर कार्य करेंगे तो मैंपन नहीं होगा हम में। शुभ भावना, शुभ कामना, गुड विशेष सबके लिए। तो ये शक्तिशाली वायुमंडल बनाएंगे, सबके प्रति समानता की भाव, एक दूसरे को देखने बराबर है, ताकि है ना ईर्ष्या ना आए वहां पर, किसी के प्रति कोई पार्शियलिटी ना हो, तो भी वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। बाबा से कंबाइन अनुभव करेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे वायुमंडल। संगठन अगर अच्छा होगा तो वायुमंडल भी अच्छा होगा। तो शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले बनो, सदा विजयी का झंडा लहराता रहे, ऐसा विशेष नक्शा तैयार करो। जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है, जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है। तो कल एक कुछ आया था उस पे, वो जो झाड़ू होती है ना, अगर उसमें धागा बना हुआ होता है तो कहते कि वो झाड़ू पूरा कचरा निकाल देती है, लेकिन अगर वो धागा खुल जाए तो झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। तो ऐसे ही यूनिटी में सहज सफलता मिलती है। और बहुत बार उदाहरण देते हैं ना कि अगर एक लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करो तो वो टूट जाती है, परंतु अगर 10-20 लकड़ियों को एक साथ तोड़ने की कोशिश करो तो नहीं टूटती वो। और जैसे कि शास्त्र में उदाहरण देते वो गोवर्धन पर्वत, जैसे कि सबकी एक एक उंगली, सबके सहयोग से वो पर्वत को उठाया गया। तो ऐसे ही यूनिटी में बाबा कहते हैं कुमारों को, जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है। तो आपको यूनिटी में रहना है। इसकी दूसरी लाइन है, हाँ, लड्डू जब बनाते हैं तो 5 उंगलियां साथ में मिलके मीठा लड्डू बनाती है।
ऐसे खाने पीने के उदाहरण दो कुछ।
हाँ, तो यूनिटी में मिलके ही भोजन बनाते हैं ना। अगर एक आदमी सोचे कि मैं कितने लोग हैं हम यहाँ, 3,000, तो अगर 3,000 लोगों का भोजन बना दे तो बना सकता है क्या वो? नहीं बना सकता है। तो जैसे कि हॉस्पिटल में भी ऐसे ही हम उदाहरण देंगे कि वो जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आता है ना, जब पूरा हार्ट बंद हो जाता है, और अगर मैं सोचूं कि मैं अकेली ही कर लूँ तो नहीं होगा। हॉस्पिटल में बजर बेल सिस्टम है, अगर सपोज कोई भी वार्ड में ऐसी इमरजेंसी होती है तो बेल दबाने के लिए कहा गया, जब वो बेल बजती है तो वो चारों तरफ वार्ड में बेल बजना चालू होती है और सब आते हैं, क्योंकि CPR जो होता है उसमें टीम वर्क होता है। उसमें हम उनको सिखाते हैं कि आपको अकेले कुछ नहीं करना है, आप अकेले सफल हो ही नहीं पाएंगे, आपको 5-6-10 लोग चाहिए ही उस पेशेंट को बचाने के लिए। अगर आप सोचे कि मैं अकेले बचाऊं तो अकेले नहीं बच पाएगा पेशेंट। तो उसमें भी है ना यूनिटी होती है, टीम वर्क होता है, और अकेले पेशेंट नहीं बच पाएगा, क्योंकि कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो तभी भी एक टीम वर्क होता है वहाँ पे। आगे बाबा कहते हैं, लेकिन गिराने में यूनिटी नहीं करना, गिराने में यूनिटी नहीं करना। अगर कोई कुछ कर देता है तो हम तुरंत उसको चिल्लाने लगते हैं, और फिर एक चिल्लाता है तो फिर दूसरा भी चिल्लाता है, तीसरा भी चिल्लाता है, सब मिलके उसको ऐसे चिल्लाते हैं कि वो गिर जाता है। तो मतलब ऑलरेडी वो आत्मा ने कुछ गलती की, ऑलरेडी वो डरी हुई है, और हम सब यूनिटी में मिलके उसको गिराए नहीं। लेकिन गिराने में यूनिटी नहीं करना, चढ़ाने में। सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, यही लक्ष्य रहे। कुमार अर्थात सदा आज्ञाकारी वफादार। आज्ञाकारी यहाँ पे बाबा से जो संबंध आता है, जैसे माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी, या गुरु जो कहता है उसकी आज्ञाओं को मानना, या तो जो टीचर कहता है उसकी आज्ञाओं को मानना। तो किन किन बातों में हमको बाबा का आज्ञाकारी बनना है, तो बहुत सारी लिस्ट निकलती है इसकी भी, कि बाबा ने जो भी हमको श्रीमत दी है उसको फॉलो करना। सबसे बड़ी और सबसे पहली आज्ञा है बाबा की, पवित्र बनो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो, और बाप की आज्ञा पर चलो। तो बाप की क्या क्या आज्ञा है? किसी को दुख नहीं दो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो, श्रीमत को कटु वचन नहीं बोलना, दूसरों को सुखदाई बोल बोलो। अमृत वेले से रात तक जो भी बाबा ने श्रीमत दी है वो सारी हमारे लिए आज्ञा है। तो कुमार अर्थात सदा आज्ञाकारी वफादार, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, जो बाप के गुण वो बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का, जो बाप के संस्कार वो बच्चों के, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो अब ऐसा और क्या क्या है जो बाप का है वो बच्चों का है?
बाबा का देखना,
बाबा का देखना वही बच्चों का देखना,
बाबा का बोलना,
जो बाप का बोलना वही बच्चों का बोलना,
बाबा का सहन करना, सहन कर दे
वो भी हमको भी उतना ही सहन करना,
बाबा के जो खजाने वो,
जो बाप के खजाने वो हमारे खजाने, जो बाप की भावनाएं वो हमारी भावनाएं, हाँ जो बाप के टाइटल वो बच्चों के समान, जैसे बाप की पालना वैसी बच्चों की भी पालना दूसरों के लिए। और हाँ ये तो बोला ना, जो बाप का कर्तव्य बच्चों का, ब्रह्मा बाबा की जो त्याग, तो दो ले सकते इधर, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, जो ब्रह्मा बाप की त्याग तपस्या वो बच्चों की त्याग तपस्या। हाँ ये बोला ना, जो बाप के संस्कार बाप निष्काम सेवा, तो हमारी भी निष्काम सेवा, बाप का यज्ञ हमारा यज्ञ,
निष्काम सेवा तो बाबा की है, हम तो फिर भी कामना तो आई ना संपूर्ण बनना,
बनना वैसा है। और जितनी बाप में सच्चाई सफाई उतनी बच्चों में भी, जो बाप का घर वो हमारा घर, बाप का मधुबन तो हमारा मधुबन।
नहीं फॉलो किसने करना है वो नहीं बार।
और
नस्तो मोहा,
जैसे बाप, नहीं ऐसा नहीं बोलो, जो बाप का वो बच्चों का,
ना बड़ा नहीं बोलो।
जो बाप की भाषा वो हमारी भाषा, ये थी हाँ वो बोलो ना, जो बाप के बोल वो हमारे बोल। और शिव बाबा का उच्चारण, ब्रह्मा बाबा का आचरण, वही हमारा उच्चारण और आचरण। यहाँ पे बाबा ने एक वाक्य बोला है, जो बाप के संस्कार, तो गॉड्स नेचर,
देने के संस्कार, दातापन,
तो बाप के संस्कार क्या क्या होते हैं? भगवान के संस्कार की बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो, तो जैसे कि देने के संस्कार, दातापन के संस्कार, रहन के संस्कार, दूसरों को क्षमा करने के संस्कार, पालना के संस्कार, सबको आगे बढ़ाने के संस्कार, कल्याण के संस्कार, सबका दुख हर के सुख देने का संस्कार। तो भगवान कैसे, इस पे हम सोच रहे थे, जैसे उस दिन मुरली में एक वाक्य था ना कि बाबा ने कहा न काला देखा, न गोरा देखा, न श्याम देखा, न सुंदर देखा, मेरा है ये देखा। तो हमारी दृष्टि कैसी होती है और भगवान की दृष्टि देखो कैसी है, वो विशेषताएं देख रहे हैं और हम मिक्सचर देखते हैं या तो बुराइयां पहले देख लेते हैं, लेकिन भगवान का संस्कार देखो कैसा है, इतनी वैरायटी प्रकार की आत्माएं उसके सामने हैं, है ना। और जब हम परमधाम में थे, जब हम कुछ और थे, जब वो नीचे आया और उसने देखा ये सब क्या है, और फिर भी वो अच्छाइयां ही देख रहा है और अच्छाइयां देख के ही आगे बढ़ रहा है। देखो भगवान का संस्कार भी, जैसे यहाँ बाबा कह रहे हैं विघ्न विनाशक बनो, है ना। तो भगवान जब यज्ञ रचने आए तो भी कितने विघ्न पड़ रहे हैं, जैसे आज की मुरली का आई थिंक प्रश्न है कि भगवान जब यज्ञ समर्थ होते हुए भी यज्ञ रचने आया है तो भी विघ्न क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि आज की मुरली का उत्तर है कि रावण उससे भी तीखा है, क्योंकि उसका राज्य छीनने के लिए आए है तो वो तो विघ्न डालेगा ही वो। तो भगवान की हर रचना में विघ्न है, जब वो आके अपने बच्चों को ज्ञान दे रहा है तो भी लौकिक से कितने विघ्न आते हैं, समाज से कितने विघ्न आते हैं, ये एक एक चीज जो यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स बने हैं। जैसे कि अगर हम इतने सुंदर ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांतिवन देखे तो ये सब ऐसे ही तो नहीं बन गए ना, कितने विघ्न हो इसमें आए हैं, लेकिन भगवान उससे डिस्टर्ब नहीं हुआ कि सोचा चलो जाता हूँ वापस अभी कि बहुत हो गया इतने सारे विघ्न आ रहे। थोड़े देर के बाद आता हूँ ऐसा नहीं बोला उसने, वो अभी तक पूरी मेहनत कर रहा है और ना बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। तो हम सोच रहे थे देखो भगवान के संस्कार कैसे हैं, वैसे ही हमारे संस्कार हो।
तो बच्चों को आते हो तो चला जाता ऊपर।
नहीं, वो देखता है कि जैसे कि वो बच्चों को इतना ज्ञान दे रहा है, उनकी जीवन में इतने विघ्न आ रहे तो भी वो साथ देता है, और बच्चे बच्चों को इतनी पालना इतना प्यार देने के बाद भी कितने बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, लेकिन फिर भी वो है ना सबको मदद करता है। कैसे संस्कार होंगे ना भगवान के, मतलब सोचने वाली बात है कि क्या है वो।
तो साक्षी करता है।
हाँ, वो साक्षी है, पूरी तरह से साक्षी है, नष्ट मोह है, उसके ही बच्चे हैं, उनके साथ कभी कभार कितना बुरा हो जाता है फिर भी वो रोता थोड़ी ना। ये तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है।
ड्रामा उसने बनाया तो फिर वो अंतर में क्या?
ड्रामा उसने बनाया, ये ड्रामा पहले से ही बना है। ड्रामा ड्रामा पक्का है उसके बुद्धि में। बुद्धि तो वो उसको साक्षी होके देखता है, तो जो भी हो रहा है इसीलिए उसके संस्कार इतने पक्के हैं और इतने अच्छे हैं, और हम गिर जाते हैं बार बार। हाँ, अंत में उसकी विजय होने वाली, तो हमको भी तो पता है ना कि हमारी विजय है अंत में, फिर भी हम क्यों परिस्थितियों में गिर जाते, क्यों थोड़ा सा विघ्न आता और हमारी स्थिति डाउन हो जाती, थोड़ी सी चीज होती और फिर भी हम डाउन। हमारे 84 जन्मों के संस्कार है, तो भगवान के भी तो संस्कार है ना, उसके वो भी तो देख रहा है कि इतने सारे तूफान आ रहे फिर भी उसको कुछ नहीं होता।
हमें बचाने के लिए बाबा ने ज्ञान दिया है, 84 जन्मों के संस्कार है, हम बता रहे हैं अपने।
तो जो बाप ने किया है वही रिपीट करना है, कॉपी करना है। इस कॉपी करने से फुल मार्क्स मिल जाएगी, वहां कॉपी करने से मार्क्स कट जाती है, लेकिन जब पकड़े जाते तभी कटती है। नहीं तो नहीं कटती। तो वहां पे कॉपी करेंगे तो कम मार्क्स भी मिल सकते हैं, वहां कॉपी करेंगे तो पकड़े भी जाएंगे, मार्क्स भी कट जाएगी, परंतु यहाँ कॉपी करने से हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ फुल मार्क्स मिल जाती। तो जो भी संकल्प करो पहले चेक करो कि बाप समान है, अगर नहीं है तो चेंज कर दो, अगर है तो प्रैक्टिकल में लाओ। कितना सहज मार्ग है, जो बाप ने किया वह आप करो। ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले ही सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित रहते हैं। बाप का वर्षा ही है सर्वशक्तियां और सर्वगुण, तो बाप के वारिस अर्थात सर्वशक्तियों के सर्वगुणों के अधिकारी, अधिकारी से अधिकार जा कैसे सकते। अगर अलबेले बने तो माया चोरी कर लेगी, माया को भी सबसे अच्छे ग्राहक ब्राह्मण आत्माएं लगती है। क्यों हम अच्छे लगते माया को? उसके पहले पहले ग्राहक थे, कौन से ग्राहक लौकिक में अच्छे लगते?
जो लंबे समय से
हमारी दुकान पे आ रहे हैं, जो ज्यादा ले लेता है, जो ज्यादा बार्गेन नहीं करता है ना, जो थोड़े ज्यादा पैसे ही देके जाएगा, जो अपने साथ और 4 लोग को लाएगा, उधारी डुबाएगा नहीं, बराबर अपना टाइम पे पैसे देके जाएगा, तो ऐसे ग्राहक अच्छे लगते। तो माया के लिए भी बाबा कहते ब्राह्मण आत्माएं जो है वो अच्छी लगती है उसको, क्योंकि इतने जन्मों से हम उसी की गोद में बैठे थे। लेकिन थोड़ा हम इस पे सोच रहे थे कि ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि हम जल्दी गिर जाते दूसरों से, दूसरे भी तो है, दूसरों की लाइफ में भी माया आती है जो दूसरे है जो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन गैर ब्राह्मण, लेकिन उसको हम ही पसंद आते हैं। देखो उनको पता ही नहीं है माया क्या होती है, लेकिन यहाँ पर वाक्य ऐसा है कि माया को सबसे अच्छे ग्राहक ब्राह्मण आत्माएं लगती है। तो क्या हमने उसकी इतनी खरीदारी करी द्वापर युग से? छोड़ के जा रहे इसलिए अच्छे लगते। इसलिए वह भी अपना चांस लेती है, आधा कल्प उसके साथ ही रहे तो अपने साथियों को ऐसे कैसे छोड़ेगी, तो उसको कैसे छोड़ेगी। माया का काम है आना, आपका काम है जीत प्राप्त करना, घबराना नहीं। देखो माया अभी अलग अलग रूप से आती है, तो इसमें हम चिंतन कर रहे थे, माया का काम है आना और आपका काम है जीत जीत प्राप्त करना, घबराना नहीं। तो माया अलग अलग रूप से आती है, तो जैसे बीमारियों के रूप में आती है माया, तो बीमारी आती है तो सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अभी क्या होगा, ये टेस्ट कर ले वो टेस्ट कर ले, लेकिन बीमारी अपना काम करे और माया और हम अपना काम करें। ऐसे नहीं कि बीमारी आ गई तो हम बैठ जाए और हम सोचे कि अब थोड़ा ठीक हो जाएंगे फिर का पुरुषार्थ करेंगे, नहीं, बीमारी के साथ साथ ही पुरुषार्थ करना है। किसी किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप रुकेंगे क्या कि 10 साल के बाद ठीक होंगी फिर पुरुषार्थ करूँगा? तो ऐसा नहीं होता है। बीमारी अपना काम करे, हम अपना काम करें। ऐसे ही परिस्थितियाँ परीक्षाएँ आती है हमारे लाइफ में, तभी भी वो परिस्थिति परीक्षाएँ ऐसा ना हो कि वो खत्म हो जाएंगे फिर हम योग लगाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति प्रकृति के रूप में भी आती है ना माया, जैसे कि यहाँ पर हर दिन हमारे लिए एक नया वेदर होता है, तो हम ये सोचें कि बारिश खत्म हो जाएगी, थोड़ा फॉग खत्म हो जाए फिर है ना पुरुषार्थ करते, फिर थोड़ा जाके मनन चिंतन करते, ठंडी थोड़ी कम हो जाएगी फिर अमृत वेला थोड़ा जल्दी करते। तो हमको ऐसे नहीं सोचना है, ये सारी चीज होते हुए वो अपना काम करे और हम अपना काम करें। परिस्थितियों में ही पुरुषार्थ ज्यादा। और एक बार यहाँ पे हमने चिंतन किया था ना कि जब परिस्थिति आती है तो थोड़ा डिटैच होके हमारा पुरुषार्थ उस समय बढ़ जाए, ना कि हम पुरुषार्थ को छोड़ दे उस समय। तो और ज्ञान चिंतन करें, और योग करें, और कुछ कुछ पढ़े। तो फिर बाबा यहाँ कहते हैं, शिकारी के आगे शिकार आता है तो घबराएंगे क्या? हम सोच रहे थे, देखिए जैसे कि बिल्ली के आगे अगर चूहा आएगा तो बिल्ली घबराती तो नहीं ना, तो वैसे ही शेर के आगे अगर हिरन आ जाएगी तो वो घबराता तो नहीं शेर।
तो वीडियो आया था उसमें चूहे से बिल्ली डर रही है। चूहे ने उसको काटा और बिल्ली भागी वहां से। कलयुग है ना तो उल्टा काम हो गया।
शिकारी के आगे शिकार आता है तो घबराएंगे क्या? माया आती है तो जीत प्राप्त करो, घबराओ नहीं। अच्छा, तो माया आती है तो जीत प्राप्त करना है, घबराना नहीं है। परिस्थितियों में बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, आगे बढ़ो, लड़ो, बैठ नहीं जाओ,
मरो, लड़ो, मरो,
लड़ो या मरो। तो शिकारी के आगे शिकार आता है तो घबराएंगे क्या? माया आती है तो जीत प्राप्त करो, घबराओ नहीं। अच्छा, ओम शांति।
आज अभी कितनी बनी जाएगी।